كفاء الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بشلي چند دنوں سے نفس کے اصلاح کے حوالے سے جو اکابرین کی عبارتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. نفس کی اصلاح کے حوالے سے ابھی تک تین ٹاپکس پہ گفتگو ہوئی ہے. تین اکابرین کی عبارتوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. اور پہلی عبارت یہ ہے کہ نفس کی اصلاح جو ہے وہ آسان کام نہیں، وہ ایک لمبا کام ہے. سالک جب شیخ کی خدمت میں آتا ہے تو اس کو تصفیہ قلب جلدی نصیب ہوتا ہے، عبادت کی طرف رغبت، بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا. مگر یہ جو تزکیہ نفس ہے، باطنی گناہ جس کو باطنی امراض کہتے ہیں، اس کی اصلاح ہونا جو ہے یہ ایک لمبا، ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اسی حوالے سے دوسری بات جو اکابرین کی عبارت جو اکابرین سے منقول، کہ نفس انسان کو گناہوں پہ ابھارتا ہے، نفس کا گناہ پہ ابھارنے کا طریقہ الگ ہے، شیطان کا گناہوں کی طرف ابھارنے کا طریقہ الگ ہے. شیطان ایک گناہ کا وسوسہ دیتا ہے، انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے تو شیطان پھر اس کو دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، دوسری قسم کی غفلت کی طرف. اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر تیسری طرف لے جاتا ہے. تو ہر وقت موقع کی مناسبت سے شیطان انسان کو مختلف طرح کی غفلتوں میں، مختلف طرح کے گناہوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. نفس کا طریقہ واردات الگ ہے. وہ ایک ہی گناہ جس کی لذت انسان کے نفس نے محسوس کر لی ہے، وہ اسی طرف انسان کو دھکیلتا رہتا ہے. اسی لیے شیطان سے کئی مرتبہ عام مسلمان بھی بچ جاتا ہے، نفس کے حملوں سے کئی مرتبہ نیک مسلمان بھی نہیں بچ سکتا. اور ہم نے اس حوالے سے کچھ ایگزامپلس، کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. نفس کے حوالے سے ایک تیسری عبارت بھی آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، اور وہ یہ کہ اکابرین کا قول ہے، من عرف نفسه عرف ربه، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ رب العزت کو پہچان لیا. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جس نے اپنے اندر کی باطنی امراض کو پہچان لیا، یہ پہچان لینا بھی بہت بڑا کام ہے. اپنے اندر کے امراض کو پہچان لینا یہ بہت بڑا کام کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات کل کی مجلس میں ہم نے بیان کی. اور پہلی وجہ یہ کہ یہ جو نفس کے امراض جو ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ میرے اندر موجود ہے. تو نفس کے امراض کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، عام بندہ مانے گا ہی نہیں کہ میرے اندر یہ عیب موجود ہے. اردو کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جس طرح درخت کو اپنے پھل بھاری نہیں لگتے، انسان کو اپنے عیب بھاری نہیں لگتے. آپ اپنے کسی بھی دوست کو کہیں گے کہ تو اس طرح غلط ہے، یہ تیرے اندر اس طرح سے عیب ہے، تو وہ آپ کی بات کو سن کر آپ سے ناراض ہو جائے گا. کیونکہ انسان جو ہے، جب تک یہ اصلاح کی لائن میں نہیں ہے، جب تک اس نفس کو کوئی بری چیز سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو اس نفس کی برائیوں کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. दूसरी वजह यह है कि नफ्स को जान लेना इसलिए बहुत बड़ा कमाल है कि नफ्स की शरारतें कई मर्तबा बहुत अरसे बाद भी सर उठा लेती। यानी एक बंदे ने बड़ी मेहनत की, अल्लाह वालों की सोहबत में भी आया, मामूलात भी किए, उसने इसके बारे में बड़ा चौकन्ना है, अपने नफ्स को नफ्स समझता भी है, उससे डरता भी है, ये भी समझता है मेरे अंदर ऐब भी है, मगर है ये ऐसी चीज इंसान के अंदर नफ्स बगावत पे उठाने वाली कि कई मर्तबा बहुत अरसे बाद भी ये सर उठा लेती है। बहुत सारे नेक लोगों की जिंदगी में भी ये नफसानियत जो है वो शरारतें करती रहती है। कल की मजलिस में हमने एक मिसाल भी दी कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में आपने मिंबर पे आके कहा कि उमर तू वही है कि जिसकी माँ उसको खुश्क गोश्त खिलाया करती थी, और ये हजरत उमर ने इसलिए फरमाया, उन्होंने अपने सहाबाए कराम अपने साथियों से अर्ज किया, अपने साथियों से फरमाया कि जी इतनी कामयाबी देख के मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा कि मुझे वो कामयाबियां मिली हैं जो अल्लाह के नबी को भी नहीं मिली। तो फरमाया कि ये मेरे नफ्स की शरारत, इस नफ्स को सीधा करने के लिए मिंबर पे बैठ के मैंने अपनी हकीकत बयान की कि तू तो वो है कि जिसकी माँ उसको खुश गोश्त खिलाया करती थी, और खुश गोश्त खाना अरबों में बहुत ही ज्यादा गुर्बत की निशानी होती थी। तो अकाबरीन ने इसलिए फरमाया कि अपने नफ्स को पहचान लेना ही बड़ा काम है कि इंसान अपने नफ्स की बीमारियों को मानने के लिए तैयार नहीं, और दूसरी वजह यह है कि ये नफ्स जो है इसकी ट्रिक्स, इसकी शरारतें, इंसान जब पूरी तरह से मुतमईन हो भी जाता है कि जी मैंने बड़ी मेहनत कर ली है इस नफ्स पे, उसके बाद भी जाके किसी ना किसी तरह से वो गिराती है इंसान को। तो शैतान के वसाविस जो हैं वो कमजोर, नफ्स के वसाविस जोरदार, नफ्स के वसाविस आखिर तक रहते हैं, नफ्स अपना काम आखिर तक करता है, और नफ्स बस बसा नहीं डालता, नफ्स पीछे पड़ जाता है कि ये करना ही है तुमने। इस हवाले से मशायख की तारीख में बड़ा मशहूर वाकया भी है कि अपने वक्त के बड़े शेख हजरत अब्दुल्ला अंदलूसी रहमतुल्ला अलैह, वक्त के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत शिबली रहमतुल्ला अलैह के भी शेख थे, बड़ी खानकाहें आपके दम कदम से आबाद थी, और मुरीदीन के साथ जा रहे थे किसी रास्ते पे, और किसी ईसाई लड़की पे नजर पड़ी और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। शेखुल मशायख है, और साथियों से कहा भाई अब मुझे तुम्हारे तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, चले जाओ। सारे चले गए, और ये उस ईसाई लड़की के पास चले गए कि मैंने तुझसे शादी करनी है। उसने कहा जी शादी का फैसला मेरा नहीं, मेरे वालिद का है। वालिद ने कहा कि जी हम तो अपनी बेटी सिर्फ ईसाइयों को देंगे। इतनी मोहब्बत में गिरफ्तार शेख वक्त जो है वो दीन इस्लाम छोड़ के ईसाइयत कबूल कर ली। नफ्स की शरारत का क्या हाल है। फिर उनके हालात जिंदगी में लिखा है कि हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह उनके पास आए और उनके सामने बहुत सालों बाद आके रोए, और फिर हजरत ने तौबा भी की, और फिर वापस से दीन की तरफ आए, और फिर उसी तरह से ये दीनी काम और ये खानकाहें आबाद हुई। मगर पता चला कि ये नफ्स की शरारतें, और ये लफ्ज अकाबरीन ने इस्तेमाल किया कि इसकी शरारतें, तो ये किसी न किसी वक्त में इंसान को ये नफ्स जो है ये तबाह करता है, ये खींच लेता है। और आम मुसलमान हैरान हो जाता है कि जी देखने में तो ये बड़ा नेक था, इससे ये ऐसी गलती कैसे हो गई है। तो ये गलती इसलिए हो गई कि हर इंसान के अंदर नफ्स है और नफ्स की शरारतें आखिर तक नहीं जाती। इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये नफ्स मरता कभी नहीं है, नेक लोग इस नफ्स को कमजोर कर देते हैं नेकी करके, नेक सोहबत में जाके, जिक्र की कसरत करके इंसान इस नफ्स को कमजोर कर लेता। इस हवाले से हमारे अकाबरीन एक वाक्य भी बयान करते हैं, हमने अपने जानने वाले एक बड़े आलिम दीन से ये वाक्य सुना। साउथ अफ्रीका में एक शेखुल हदीस थे। अब शेखुल हदीस तो वो जो बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, वो कई सालों से बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे और बहुत ही नेक, मुत्तकी, परहेजगारी, नेकी वाली जिंदगी जैसे होती है मशायखुल हदीस। मगर नफ्स के अंदर गुस्सा था, जब गुस्सा आता तो गुस्सा बेकाबू हो जाता, तो हर बंदा जो सुनता वो हैरान हो जाता कि ऐसे कैसे, एक तरफ शेखुल हदीस और एक तरफ बेकाबू गुस्सा। तो खुद भी अपने इस ऐब से वाकिफ थे। एक मर्तबा उनके मदरसे में कोई बुजुर्ग आए अल्लाह वाले, तो उन्होंने उनसे बैत कर ली। बैत करके घर पे जाके बेगम को बताया कि जी मैंने हजरत से बैत कर ली। बेगम ने कहा मैं किसी भी हजरत को अब नहीं जानती, मैंने देख लिया आप भी तो हजरत हैं, तो आपका गुस्सा कोई काबू में आता है। आपके हजरत को मैं हजरत उस वक्त समझूंगी अगर आपका ये ऐब जो है ये पाक हो जाए। फरमाते हैं कि इस मरतबा मैं भी कमर बस्ता हुआ और जो शेख थे उनके बताए हुए मामूलात भी पाबंदी से की, उनको अपना ये ऐब सामने रख भी दिया। उन्होंने भी बड़ी दुआएं फरमाई, बड़ी हिदायत भी देते थे, बड़ी तवज्जो भी देते थे, और कुछ ना कुछ करके कुछ अरसे में जाके नफ्स का ये जो तकाजा था इसको मुख्तलिफ ट्रिक्स इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ तरीकों से इसको कुछ ना कुछ करके दबाने के करीब पहुंच ही गए। तो एक दिन जब शेख वहां आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि हजरत आज तो घर वालों ने आपकी दावत दी है, घर तशरीफ ले आए। उन्होंने कहा कि जी अब आपके शेख को हम शेख मानने लगे हैं, क्या आपके गुस्से में कुछ कमी आई? तो पता चला कि इस नफ्स के अंदर ऐसी चीजें हैं कि कई मर्तबा ये नफ्स काबू में आने के बावजूद भी बेकाबू होता है, इसकी शरारतें आखिर तक रहती हैं। इससे मुतालिक एक सवाल फिर भी लोग करते हैं, ये जो अकाबरीन की इबारत है मन आरफ नफ्सहु आरफ रब्बहु, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया, इसका मतलब है नफ्स की इसलाह किए बगैर ही अल्लाह को पहचानना शुरू हो गया। मतलब तो यही हुआ ना इसका, कि जिसने सिर्फ पहचान लिया कि मेरे ऐब क्या हैं उसने रब को पहचान लिया, तो आम बंदा ये भी सोच सकता है कि अच्छा यानी इस्लाह नफ्स अभी नहीं हुई है, सिर्फ नफ्स को पहचान लिया, जिसने लिख दिया कि मेरे अंदर ये भी है, गुस्सा भी है, तो मेरे अंदर शहवत भी है, तो मेरे अंदर कीना भी है, तो बोझ भी, तो अब ये बड़ा कोई मारिफ आरिफ बन गया, कोई बड़ा अल्लाह आरिफ बिल्ला बन गया, बड़ा अल्लाह वाला बन गया, तो ये भी फेर बात महसूस नहीं होती है। तो काबरीन ने इसका जवाब दिया कि नफ्स को पहचानेगा वही जो नफ्स की इसलाह की बहुत ज्यादा कोशिश कर चुका होगा, बहुत सारी कोशिश के बाद ही इंसान को इस नफ्स की मार्फत नसीब होती है। ये ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ लिख दें कि ये मेरे अंदर ऐब है, ये ऐब बहुत बड़ा एक रास्ता तय करने के बाद ही पता चलते हैं। जिसको नफ्स की मार्फत होती है, उसने नफ्स की अच्छी खासी इसलाह भी की हुई होती है, तब जाके ये नफ्स की मार्फत नसीब होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस नफ्स की इसलाह नसीब फरमाए। आखिर दावाना सैदिया اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.